श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्रद्धा निवासियों को सत्संग सुनने का समय समय पर अवसर मिलता ही रहता है। सत्संग आप लोग सुनते ही रहते हैं, लेकिन सत्संग का मतलब इतना ही नहीं होता है कि हम आए और बैठे फिर सुनकर चले गए। समाज में कल्याण के नाम पर अनेकों प्रकार के सिद्धांत प्रचलित हैं, पूजा पद्धति है, तीर्थों का वितरण है, व्रत है, उपवास है, दान है, यज्ञ है, ये जितने भी सिद्धांत प्रचलित हैं ये सब मात्र कल्याण के नाम पर। लेकिन हमें सबको स्वयं विचार करना है कि वास्तव में ये सब कल्याण के साधन हैं भी कि नहीं। साधन स्वयं में अपना एक परिचय होता है, दवा स्वयं में अपना एक परिचय होती है। महीनों दवा खाने के बाद यदि रोग नहीं जाता है तो वो दवा व्यर्थ होती है। तो इस धरातल पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी परंपरा में जन्म नहीं लिया। आजीवन हम उस परंपरा का पालन करते हैं, और किसी भी परंपरा का मनुष्य पालन करता है वो दुख से छूटने के लिए करता है। दवा का सेवन आप करते हैं तो रोग से छूटने के लिए ही तो करते हैं, या रोग को बढ़ाने के लिए। हमारा रोग कम हो जाए इसलिए हम दवा का सेवन करते हैं। किसी परंपरा को हम अपनाते हैं, इस परंपरा के पालन से हमारे जीवन की समस्या कम होगी, दुख कम होगा, हमारे जीवन में जो चिंताएं हैं वो कम होंगी। इसके लिए हम उन परंपराओं का सहारा लेते हैं, रीति रिवाजों का सहारा लेते हैं। लेकिन मनुष्य यदि विचार करे कि इन परंपराओं का पालन हमसे पहले वालों ने किया है, उनके जीवन में हमें सुख शांति नहीं मिली, कभी देखा नहीं उनको सुख शांति से जीते, तो उस परंपरा का पालन करके हमें सुख शांति कैसे मिलेगी। ये जो समाज में अनेकों प्रकार के शिविर लगते रहते हैं, कोई नेत्र शिविर लगवाता है, कोई कान का लगवाता है, कोई दांत का लगवाता है, कोई पेट का लगवाता है, कोई हाथ का लगवाता है, कोई पैर का लगवाता है, ये वास्तव में धार्मिक पुरुष का लक्षण है। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति के अंदर ही तो दया होती है, और जिसके अंदर दया होगी वही समाज में कुछ सेवा का काम करेगा। लेकिन ये धर्म नहीं है, ये धार्मिक पुरुष का लक्षण है। ये संसार एक खेती है, इसमें आप जो कुछ बोओगे, मान लीजिए किसी ने आंखों का शिविर लगवाया तो आंख मुफ्त में लगवाई तो उसकी आंखें सही रहेंगी क्योंकि उसने आंख बोई ना। आप खेत में चना बोओगे तो चना ही तो मिलेगा, गेहूं बोओगे तो गेहूं मिलेगा। तो आपने आंख बोई, हाथ बोया, किसी का टूटा हाथ लगवा दिया, टूटा पैर लगवा दिया, लीवर बिगड़ा है उसको सही करवा दिया, दांत लगवा दिया, तो ये आपके सब सही रहेंगे, ये नहीं बिगड़ेंगे। किसी भूखे को भोजन दे दिया तो आप भूखे नहीं रहेंगे, लेकिन सब कुछ होने के बाद आप भूखे नहीं हैं, आपकी आंख भी सही है, कान भी सही है, हाथ भी सही है, पैर भी सही है, लीवर भी सही है, लेकिन जीवन में दुख है। उस दुख से छूटने के लिए हम परमात्मा का चिंतन करते हैं। आप समाज में जो कुछ बोते हैं, ये संसार एक खेती है, वो तो लौट के आपको मिलेगा। लेकिन मनुष्य इसी को अपना धर्म मान लेता है कि ये धर्म है, ये धर्म नहीं है, ये धार्मिक पुरुष का एक लक्षण है। क्योंकि धार्मिक व्यक्ति में ही तो दया होती, धार्मिक व्यक्ति कभी गलत सोच ही नहीं सकता। आज तक धार्मिक व्यक्ति ने किसी को धोखा दिया हो ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं। हर मनुष्य की एक ख्वाहिश होती है कि मैं जब तक इस दुनिया में रहूं सम्मान के साथ जीऊं, समृद्धि के साथ जीऊं, सफलता के साथ जीऊं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में सफलता नहीं चाहता, चाहे चोरी ही क्यों न हो, जब वो चोरी करने जाता है तो भगवान को मना के जाता है, आज मुझे मेरे काम में सफलता मिले। तो सफलता की कामना कौन नहीं करता? हर व्यक्ति सफलता की कामना करता है, हर व्यक्ति समृद्धि की कामना करता है, हर व्यक्ति सुख की कामना करता है, सम्मान की कामना करता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने जीवन में अपमान चाहता है? सभी सम्मान चाहते हैं। सम्मान, समृद्धि और सफलता, इनके साथ मनुष्य जीना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि जो कुछ मेरे पास है वो हमेशा ऐसे ही रहे, क्योंकि उसमें से कुछ भी कम होगा तो हमें दुख होगा। लेकिन ये बहुत आश्चर्य की बात है, न तो समृद्धि मनुष्य के हाथ में। मनुष्य सोचता है कि मैंने अपने बुद्धि से इतना धन कमाया, मैंने अपने बुद्धि से सम्मान कमाया, मैंने अपने बुद्धि से सफलता प्राप्त की, लेकिन बुद्धि भी बनी रहती है, मनुष्य की बुद्धि वही रहती है, मनुष्य वही रहता है, और देखते देखते मनुष्य का दिवाला निकल जाता है, वो धन चला जाता है। सम्मान देखो, आपके शहर में बहुत से ऐसे आदमी आए होंगे, पहले कितना सम्मान था उनका, मनुष्य वही है, उन्होंने अपना सम्मान क्यों खो दिया? जब बुद्धि से सम्मान पाया तो बुद्धि तो वही है। सफलता, जब मनुष्य को सफलता मिल जाती है तो कहता है मैंने इतना पैसा खर्चा किया, पानी की तरह पैसा बहाया तब मुझे सफलता मिली है, मैंने बहुत तिकड़म किया, मैंने ऐसा किया वैसा किया, बहुत लंबी लंबी बातें होती हैं। लेकिन इस धरातल पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आज सफल हुआ कल उसकी पराजय नहीं हुई, कल उसे असफलता का मुंह जरूर देखना पड़ा। जब वो असफल हुआ तब उसने पैसा क्यों नहीं लगा दिया, तब उसने बुद्धि क्यों नहीं लगा दिया, वो फेल हो गया। ये संसार का नियम है। तो हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने जब देखा, संसार का अध्ययन किया कि मनुष्य संसार में सफलता, समृद्धि और सम्मान के साथ, हर मनुष्य की कामना होती है कि भगवान मैं जब तक जीऊं सफलता समृद्धि के साथ, सम्मान के साथ जीऊं, और जब यहां से शरीर छोड़ के जाऊं तो भगवान का भी धाम मिले, भगवान के दरबार में भी सम्मान मिले, मेरा वर्तमान भी सही रहे और जो भविष्य में मिलने वाला जन्म है वो भी सही रहे। इन दोनों के लिए महापुरुषों ने एक व्यवस्था दिया। सबसे पहले भारत के वैदिक ऋषियों ने, करोड़ों वर्ष पहले, जब समाज का अध्ययन किया, समाज चाहता क्या है, फिर उन्होंने कहा कि भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि का, दोनों का स्रोत परमात्मा का चिंतन, परमात्मा के चिंतन के द्वारा आत्मिक पूंजी आए, और ये जो आत्मिक पूंजी है, आत्मिक संपत्ति है, वो हमें भौतिक सफलता देती है, हर प्रकार की समस्याओं का निवारण करती है, बुद्धि से नहीं, जिसको आप कहते हैं अदृश्य सत्ता, ईश्वर की कृपा। तो उन ऋषियों ने पूरे संसार के लोगों को एक संदेश दिया। समाज में संकीर्णता होती है, वो कहते हैं वो यहाँ कितनी संकीर्णता है, और संकीर्णता बस सबने अपना अपना भगवान भी बांट लिया, लेकिन उन जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उनके मन में किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं होती, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। संकीर्णता होती है जहां हमारा विचार संकुचित हो जाता है, जहां हमारे मन की भावनाएं दूषित हो जाती हैं, वहां संकीर्णता होती है। तो उन ऋषियों ने कहा कि अगर आपको समृद्धि चाहिए और समृद्धि के साथ साथ ईश्वर की कृपा भी चाहिए, आपका वर्तमान भी सुरक्षित रहेगा और भविष्य भी, तो एक परमात्मा में अपनी आस्था को केंद्रित करें, जगह जगह नहीं, परमात्मा ना तो कहीं तीर्थ में है। तीर्थों का विधान ऋषियों ने इसलिए रखा क्योंकि हर जगह गांव गांव तो संत पहुंच नहीं सकते, तीर्थों में रहते। तो तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। और वैसे संत तीर्थ जाने से एक फल होता है, पुण्य पुरुषार्थ की वृद्धि होती है, उससे हमें वो संत मिलते हैं। और संत अगर मिल गए तो फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष इसकी जानकारी मिल जाती है कि वास्तव में धर्म क्या है, वास्तविक अर्थ क्या है। ये तो अर्थ आज है कल नहीं रहेगा। कामना जो है, हमें कौन सी कामना करनी चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, आध्यात्मिक विकास हो, इस काम की कामना की जानकारी होती है। अनंत कामनाएं मनुष्य करता ही रहता है और हर व्यक्ति अपनी अधूरी कामनाओं को छोड़ के ही पिता होता है। दुनिया में आज तक कोई भी पिता अपने काम को पूरा करके नहीं गया, हर पिता अपने बच्चे के लिए अधूरा काम ही छोड़ के जाता है। और जब से सृष्टि है आज तक वो काम अधूरा ही है और रहेगा। तो कौन सी ऐसी कामना है जिसकी पूर्ति के बाद हमारा जीवन पूर्ण होता है, इस काम कामना की जानकारी, और इसी कामना के द्वारा उसकी मुक्त होता है, मोक्ष की जानकारी मिलती है। तो संत मिले फल चार, सतगुरु मिले, उन संतों में से यदि कहीं सतगुरु मिल गए तो अनंत फल। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहिं बहु विधि सब संता। हरि अनंत है तो सतगुरु मिले अनंत फल, जो अनंत परमात्मा है उसकी प्राप्ति हो जाती। लोग कल्याण के नाम पर व्रत भी रखते हैं, उपवास भी रखते हैं, बहुत से व्रत करते हैं। माई लोग ज्यादा व्रत करती हैं, लेकिन जो चीनी की फैक्ट्री में जो काम करते हैं वो जानते हैं चीनी कैसे बनती है। व्रत में क्या करते हैं लोग, मीठा खाएंगे, फल खाएंगे, लेकिन अन्न नहीं खाएंगे, ये व्रत की परंपरा। और जब चीनी बनती है तो फास्फोरस बनता है, फास्फोरस होता है, उस फास्फोरस से ही उसकी सफाई होती है। जो हजारों जानवर होते हैं ना, उनके जानवरों की हड्डी का पाउडर, तो हड्डी का पाउडर हम अपने पेट में खा लेंगे, व्रत के दिन खाएंगे मीठा, उसी रस का गुड़ बनता है, काला होता है और सफेद किया जाता है उसी फास्फोरस से, हड्डी के पाउडर से। और ये सब कुछ करते हैं कल्याण के नाम पर, तीर्थों में जाते हैं कल्याण के नाम पर, पूजा पाठ करते हैं कल्याण के नाम पर। तो आखिर इन परंपराओं का पालन हम कब तक करते रहेंगे, इसी वास्तविकता की जानकारी के लिए सत्संग का आयोजन होता रहता है समय समय पर, ताकि समाज की भ्रांतियां दूर हों। जब तक सही दवा नहीं मिलती है तब तक रोग बना रहता है, और दवा सही मिल जाती है तो रोग खत्म हो जाता है। तो दुख से छूटने का जब सही रास्ता मिल जाता है तो हमारे जीवन से दुख चला जाता है। जैसे दवा की हर खुराक से रोग कम होता है, ऐसा नहीं कि एकदम होता है, दवा की हर खुराक रोग को कम करती है, भोजन का हर ग्रास भूख को कम करता है। इसी प्रकार जो कल्याण का रास्ता है, सुख और शांति का रास्ता है, हर कदम पे आपके जीवन की समस्याओं का समाधान करता है। कल्याण के रास्ते पर चलने वाला और चलाने वाला दोनों होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति कल्याण के रास्ते पर चलता है। और इस बेगारपने से छूटने के लिए ही तो हमें मनुष्य का शरीर मिला है, और हम इन संसार की व्यवस्था में इस अमूल्य जीवन को भी नष्ट कर देते हैं, और अंत में ये व्यवस्था हमारे दुख का कारण बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये व्यवस्था गलत है, ये तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन इससे सबसे बड़ा कर्तव्य है अपनी आत्मा को पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि योनियों से छुटकारा दिला। और ये कब संभव है, जब हम सही रास्ता पकड़ लें। एक बार चार पांच गंजेरी थे, रात का टाइम था। बोले भाई आग हमारे पास नहीं है और गांजा पीना है, बड़ी जोर से गांजा पीने का मन कर रहा है। तो बोले पास के पास में गांव दिख रहा है, ले आओ। और वो खेत की रखवाली के लिए गए थे तो उसमें से पांच छह थे, एक को भेज दिया, लालटेन थी उनके पास, वो लालटेन उजाला लेकर के हर घर में कहे भैया आग है। बोले आग नहीं। तो एक बुजुर्ग निकले, बोले कैसे पागल हो, आग तो तुम्हारे पास है, तुम तीन घंटे से परेशान हो। तुरंत लालटेन को ऐसे नीचे किया, उसमें से एक लकड़ी लगाया और उसमें से आग लगा के घास फूस थी उसमें लगा दिया, कहें देख ये है आग, आग तो तुम्हारे। बोले हैं ये हमारे दिमाग में ही बात नहीं आई, आग तो हमारे पास, हम बताओ तीन घंटे से आग खोज रहे हैं। तो कल्याण का रास्ता ऐसे ही हम खोजते रहते हैं, कभी कोई कहीं खोजता है, कोई कहीं खोजता है, कोई कहीं खोजता है, वो चीज उसी के पास, हर वस्तु आपके पास है। मनुष्य के अंदर इतनी प्रतिभा है, इतनी क्षमता है कि वो परमात्मा को प्राप्त करने तक की क्षमता है। इस सृष्टि में जहां भी देखो, जज से लेके राष्ट्रपति से लेके चपरासी से लेके मंदिर में जो भगवान की आकृति है वो भी मनुष्य के आकार की है, मतलब उस ईश्वर को प्राप्त करने की, ईश्वर बनने की भी क्षमता मनुष्य के अंदर है। लेकिन जैसा गुरु मिल जाए उस प्रतिभा को वो उभार देता है। आपके अंदर उर्दू जानने की भी क्षमता है, अंग्रेजी जानने की भी क्षमता है, अंग्रेजी मास्टर मिल जाएगा तो उस क्षमता को पैदा कर देगा, उर्दू मास्टर मिल जाएगा तो उर्दू जानने की क्षमता को पैदा कर देगा, इंजीनियर मिल जाएगा तो आपको टेक्निकल जानकारी हो जाएगी, वो भी जानकारी आपके अंदर है। हर कला मनुष्य के अंदर विद्यमान है और जिस कला का मास्टर मिल जाता है उस कला को उभार के उसको सामने कर देता है। इसी प्रकार परमात्मा को जानने की भी क्षमता सबके अंदर विद्यमान है, जैसा मास्टर मिल जाता है उस क्षमता को उभार के उसको सामने कर देता है। ऐसा नहीं, और भगवान जब तक कृपा नहीं करता है, भगवान जो कुछ नहीं देता है तो संसार में जो कुछ मिलता है आज है तो कल नहीं है, कोई गारंटी नहीं है उसकी। एक बहुत बड़े जिम्मेदार थे, चार पांच सौ एकड़ का फार्म था, उस समय ट्रैक्टर नहीं थे, तीस चालीस हर चलते थे उनके, हर चीज की मौज थी। जब मनुष्य संपन्न होता है तो वो भगवान को भूल जाता है, वो सोचता है, हम हर आदमी की एक धारणा होती है कि जब किसी चीज की कमी होती है तब भगवान को याद किया जाता है, लेकिन ये मनुष्य की भूल है। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीर उस दास की कौन सुने फरियाद। कोई सुनता भी नहीं और मांगने से भगवान देता भी नहीं। अगर भगवान मांगने से देता तो आज धरती में कोई गरीब नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता, अस्पतालों में कोई मरीज नहीं रहता और जेलों में कोई कैदी नहीं रहता। सब तो वहां से छूटने की भगवान से प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान ने सुना क्या? तो पहले उसके पशु बीमार रहने लगे, फिर भी ध्यान नहीं दिया, बोले ये तो संजोग है। फिर आज परिवार में परेशानी आ गई, फिर भी ध्यान नहीं दिया, वो खुद छह महीने बीमार रहा, कोई दवा फायदा ही न करे। तो एक दिन जब न उठ पाता था न बैठ पाता था, खाट में पड़े पड़े दिन भर रोया कि भगवान मुझे बचा लो, मैं आपका भजन करूंगा, ना ये मेरे धन काम आया, ना परिवार काम आया, ना संबंधी काम आए, अब मैं हार करके आपको, हारे को हरि नाम, अब हार करके मैं आपको याद कर रहा हूं। तो दिन भर तो रोया था, रात भर रोया, पता नहीं कब नींद लग गई। तो भगवान स्वप्न में दिखाई दिए, बोले क्यों, मुझे क्यों याद कर रहा है? तुमने जिनके लिए समय दिया है उनसे प्रार्थना करो, मेरे लिए तो तुमने कभी समय दिया ही नहीं, और जिनके लिए तुमने समय दिया है आज उनमें से कोई तुम्हें इस दुख से नहीं बचा सकते, और मेरे लिए तुमने समय दिया ही नहीं तो मैं तुम्हारी सुनूं क्यों, मुझसे तुम प्रार्थना भी मत करो, तुम्हारी प्रार्थना कौन सुनेगा। मेरे लिए तो समय दिया ही नहीं, और जिनके लिए दिया वो काम आए नहीं, तो उसने क्षमा मांगा, कहा प्रभु अब मेरे समझ में आ गया मैं आपके लिए समय दूंगा, ना कोई दवा ना दारू, भगवान की कृपा हुई, संकल्प ले लिया कि मैं आपका भजन करूंगा। बस वो ठीक होने लगे, धीरे धीरे स्वस्थ हो गए, लेकिन समय दिया। तो इंसान संभलता है ठोकर खाने के बाद, ठोकर लग गई, दिशा बदल गई, तो ये धन की चकाचौंध, सम्मान की चकाचौंध, पद की चकाचौंध में फिर भगवान को भूल जाते हैं, उनको ये पता ही नहीं है। जिसको पद मिला है, जिसके पास धन है, अगर वो मनुष्य इतना ही विचार कर ले कि जिस दिन ये मेरा साथ छोड़ देगा उस दिन मेरा क्या होगा, कौन साथ देगा, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी गलती नहीं करे। कोई भी अधिकारी, उनसे भूल होती है ना, पद पाकर के सबसे भूल होती है, और जिसके पास धन हो जाता है उससे भी भूल होती है। यदि वो व्यक्ति, और दुनिया की कोई चीज टिकाऊ नहीं है, पद भी एक दिन छूटना है और धन भी एक दिन नष्ट होना है, अगर वो मनुष्य ये विचार कर ले कि जिस दिन तेरा ये पद छूट जाएगा, तेरा धन नष्ट हो जाएगा, धन को उठाने लायक नहीं रहेगा, उस दिन तुम्हारा साथ कौन देगा, केवल प्रभु की कृपा। उस कृपा को पाने के लिए आप हर समय प्रयास करो, तो आपको दुख में फिर भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा, भगवान से कभी मांगना नहीं पड़ता है। जब मनुष्य को ठंडी लगती है और कहीं आग जल रही होती है, तो क्या आज तक किसी व्यक्ति ने आग से कहा कि मेरी ठंडी को दूर कर दो, बस वहां आग जल रही है आप यहां से जाना शुरू कर दो, और ज्यों-ज्यों आग के पास पहुंचते चले जाओगे वो ठंडी दूर होती चली जाएगी, और एकदम आग के पास पहुंच जाओगे तो एकदम ठंडी दूर हो जाएगी। इसी प्रकार आप परमात्मा की तरफ चलना शुरू कर दो, उससे कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे जीवन के दुख कम कर दो, दुख मिटा दो, केवल उसकी तरफ चलना शुरू कर दो। जितना कदम रखोगे उतना ही आपको, और वैसे जो विचारक लोग हैं उनके लिए तो 10 मिनट का सत्संग बहुत होता है, और जो विचारक नहीं होते सत्संग सुनना ही एक पुण्य समझते हैं, उनके लिए समय लगता है। रज्जब बादशाह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और दादू दयाल एक अच्छे महापुरुष थे, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, हर महापुरुष की वो अवस्था होती है, भगवान अपने प्रेम करने वालों को अपना पद दे देता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने प्रेम करने वाले को अपना पद देते, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से, कलेक्टर से कितना प्रेम करो लेकिन अपना पद नहीं देंगे, लेकिन भगवान से प्रेम करो तो भगवान अपने प्रेमी को अपना पद ही दे देता है। तभी तो आपकी तरह जन्म लिया भगवान बुद्ध कहलाए, आपकी तरह जन्म लिया भगवान महावीर कहलाए, भगवान शब्द लग गया ना, भगवान वेदव्यास साहब, कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, यारी साहब, तो साहब माने परमात्मा, साहब सो सब होते हैं बंदे से कछु नाही, राई खो पर्वत करे पर्वत राई माए। तो भगवान अपने प्रेम करने वाले से अपना ही पद दे देता है, उसमें कमी नहीं रखता है। इसके बाद भी भगवान से प्रेम करने के लिए हमारे पास समय नहीं, और दुनिया में अभी तक जिससे आपने प्रेम किया न वो आपके जीवन में आने वाले दुख को बचा रोक सकता है, और न आप उसके जीवन में आने वाले दुख को रोक सकते हैं। चाहे कोई बाहर से कितना ही शक्ति संपन्न क्यों ना हो, और ये निश्चित है कि संसार का एक दिन जो कुछ हमें मिला है, वो पद मिला है, धन मिला है, शरीर मिला है, इनका सबका एक दिन अंत निश्चित है। और जिस दिन इनका अंत होगा उस दिन हमारा साथ कौन देगा। बस वो क्षण मनुष्य याद रखे तो अपने कल्याण का वो आचरण कर पाएगा। और कल्याण के लिए केवल एक ही बात, बाहर कहीं कुछ नहीं है कल्याण। जिसने भी परमात्मा को पाया है, उसकी कृपा पाई है, तो अपने मन को साफ करे, मन की सफाई करे। जिसने भीतर साफ कर लिया, आप किसी भी व्यक्ति को अपने घर बुलाते हैं तो जैसा वो होता है उसके स्तर का उसको आसन देते हैं। मंत्री को बुलाएंगे, दूसरी व्यवस्था रहेगी। किसी साधारण आदमी को बुलाएंगे, दूसरी व्यवस्था रहेगी। लेकिन किसी को बुला करके और फिर वहां गोबर फैला दो, गंदगी फैला दो, फिर कहिए आप बैठिए, वो दोबारा कभी आपके दरवाजे आएगा ही। और दुनिया की सर्वोपरि सत्ता है परमात्मा, और उसको जिसने भी पाया है, अपने हृदय में पाया है, बाहर किसी ने नहीं, उस हृदय में दुनिया की सर्वोपरि सत्ता को बैठाने के लिए आपका कर्तव्य क्या है? पहले उसकी सफाई करो। जिस प्रभु को अपने हृदय में बैठाना है, आप देखो कि उस प्रभु के लायक हमारा हृदय वो आसन बना कि नहीं बना, उसको योग्य सफाई हुई कि नहीं हुई। भगवान राम ने कहा ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल हृदय वाला है वो मेरी कृपा पा जाता है, और जिसके हृदय में कड़वाहट है, कटता है, कुटिलता है, छल है, बनावटीपना है, वो कभी मेरी कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं यहाँ, लेकिन भगवान राम ने जो शर्त रखी थी उस शर्त को उन्होंने पूरा किया और बताया कि कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर पाछे लागे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जब कबीर कहते हैं, जब मुझे दुख था तो मैं भगवान को याद करता था, लेकिन मेरे अंदर कपट था तो भगवान मेरी सुनते ही नहीं थे। अब मेरा मन निर्मल हो गया भजन करते करते, ऐसे जैसे गंगा नीर, आज से 500 साल पहले की गंगा, आज की गंगा नहीं, जब लोग प्रदूषण जानते ही नहीं थे, 10 फीट 20 फीट नीचे का सिक्का दिखाई दे जाता था, इतनी निर्मल। तो कबीर मन निर्मल भया, भगवान राम क्या कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त होता है, छल कपट वाला तो मुझे कभी भाता ही नहीं। अब बताइए, हमारा मन जो है एक मिनट में न जाने कितने देवताओं को बदल देता है, क्योंकि मन में आस्था ही तो नहीं। कबीर ने कहा मैंने अपने मन को निर्मल कर लिया जैसे गंगा नीर। अब इस अवस्था में पीछे पीछे भगवान घूम रहे हैं कि कबीर हमारी बात तो सुनो। कबीर कहते हैं जब हम सुना रहे थे, दुख था तब आप सुनते नहीं थे, अब हमें आपसे कुछ चाहिए ही नहीं तो हम क्यों सुने। तो पाछे लागे हरि फिरे, कहा थे कबीर 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 सुनो। तो कबीर कहते हम सुनते ही। एक बार जो है हवाई जहाज जा रहा था अमेरिका, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसमें आग लग गई। तो जहाज के सुरक्षा कर्मियों ने अनाउंस किया कि जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया, आग लग गई, आप लोग पैराशूट लेकर के कूद जाओ। सब लोग कूद गए, कुछ जल भी गए, उसमें से एक सरदार जी भी थे। अब उनका संजोग, आज तो बटन से खुलता है, प्रेशर से खुलता है पैराशूट, पहले ये आविष्कार नहीं था, पहले हवा के प्रेशर से खुलता। वो पैराशूट चिपका रह गया, खुला नहीं। तो कहा हे गुरु नानक जी हमारी रक्षा करो। फिर भी देखा पैराशूट नहीं खुला, तो कहा हे शेरा वाली, हे पहाड़ा वाली, तुम्ही मदद करो। फिर भी पैराशूट नहीं खुला,
तो बोले हे हनुमान जी आप मेरी रक्षा करो। फिर भी पहला सूट नहीं खुला तो फिर कहा हे बंसी वाले कृष्ण कन्हैया मैं तुम्हारी शरण में हूं मेरी रक्षा करो। और इतने में जो है और खुला तो नहीं एक चट्टान में गिरे धड़ाम से खत्म हो गए। भगवान के सामने जब उनकी आत्मा हाजिर हुई तो बोले हमें दोबारा कहीं जन्म दोगे हम कह देंगे कि कहीं कुछ नहीं किसी का नाम लो कुछ होता ही नहीं। बोले नहीं इसमें हमारा दोष नहीं है कुछ हमारा कोई रूप ही नहीं है। अकथय नाम है अनादि रूपा अनुभव गम्य अखंडे अनुपा। अकथ अनाम अनादि अरूपा कोई रूप ही नहीं बिन पद चले सुने बिन काना करे बिन कर्म करे विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिन बाणी बकता बर जोगी। अस सब भांते अलौकिक करनी महिमा चा सो जाई नहीं बरनी। ऐसा कुछ नहीं मेरा कोई रूप ही नहीं। तुमने गुरु नानक देव जी को याद किया इतने मैंने दाढ़ी बाल लगाया पगड़ी बांधी इतने तो तू राम जी को याद करने लगा। फिर मैंने पीताम्बर पहना धनुष बाण खोजा इतने तू पहाड़ा वाली शेरा वाली को याद करने लगा। तो भगत जी ये बताओ वो 6 मीटर की साड़ी लपेटने में टाइम लगा इतने तूने हे हनुमान जी तो मैं बंदर वाला मुंह लगाने लगा पूंछ लगाने लगा इतने तूने मुरली वाले को याद कर लिया मुझे फिर पीताम्बर पहनने लगा मुरली खोजने लगा इतने में तो तू गिर गया तो मैं क्या कर। तो एक कही साधे सब सधे सब साधे सब जाए तुलसी मूल है से ये फूले करे अघाए। मन तो एक जगह लगता नहीं आदमी सोचता है मैं एक श्वास में सब देवता का नाम ले लूं कहीं कोई नाराज न हो जाए भगवान का। ये तो एक व्यवहारिक क्षेत्र की सोच हो गई ना भगवान के यहाँ व्यवहारिक क्षेत्र की सोच चलती ही है। जैसे आपका निमंत्रण होता है 10 जगह अभी कभी होता है ना जब बारात आती है कोई उत्सव होता है शहरों में तो 10 जगह से निमंत्रण आ जाता है तो आदमी सोचता है किसी को छोड़ो मत 5-5 मिनट सबके पास हो आओ कोई नाराज ना हो। ऐसे आदमी सोचता है कि जितने देवी देवता हैं सबको बैठा लो सबका नाम ले लो कोई नाराज ना हो जाए और मिलता कहीं जब कुछ है ही नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन देवता नाम की कोई अस्तित्व नहीं है सृष्टि में। मनुष्य श्रद्धावान है जिस देवता पे मनुष्य की श्रद्धा स्थिर वो झुक जाती है उस श्रद्धा को मैं ही स्थिर करता हूँ। अर्जुन फल का विधान भी मैं ही करता हूँ। अगर वहां देवता होते तो देवता ही फल देते। भगवान कृष्ण कहते हैं फल भी मैं ही देता हूँ तो जब फल मिल जाता है तो बुराई क्या जब फल मिल जाता है तो बुराई क्या है तो वो फल अर्जुन भोगने में आ जाता है। फल को भोगने वाला भी नष्ट हो जाता है और फल भी नष्ट हो जाता है तो बचा क्या। आप लोग तीर्थों में जाते हैं वहां जाके मांगते क्या है धन मांगते हैं सम्मान मांगते हैं पुत्र मांगते हैं शादी मांगते हैं संसार की ही तो कोई वस्तु मांगते हैं और संसार की वस्तु टिकाऊ कहाँ है। इतना आपने खर्च किया मोटर गाड़ी ले गए कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है इतना खर्च उठाया दुख उठाया गोवर्धन की लेट के परिक्रमा भी किया लेकिन इतना कष्ट उठाने के बाद आपने मांगा क्या दुख। संसार की ही तो कोई उपलब्धि मांगी और संसार की कौन चीज टिकाऊ है जिस दिन वो चीज नष्ट होगी क्या हमें खुशी होगी। तो इतना परिश्रम करके भाग तोड़ करके हम उनसे दुख ही तो मांगते हैं इसलिए हमारे जीवन में दुख बना रहता है। भगवान से भगवान को ही मांगो। लोग क्या कहते हैं भगवान के यहाँ जाते हैं तो क्या कहते हैं भगवान हमें लक्ष्मी दे दो। अभी दीपावली में सबने पूजा किया होगा ना अगर आपके पास जाए कोई और सीधे आपसे कहे कि आप अपनी पत्नी को दे दो आप उसको लठ लेके दौड़ा दोगे ना। लक्ष्मी तो भगवान की पत्नी है चरण दबाती रहती है और आप सीधे भगवान से कह दो अपनी पत्नी हमें दे दो। भगवान से भगवान को ही मांग लो और जहां भगवान रहते हैं वहां सब व्यवस्था रहती। इसलिए कहा एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तुलसी मूले से ये फूले फरे ये गाय। और लोग कहते नहीं भगवान तुम्हें तो नहीं चाहिए, तुम अपनी पत्नी हमें दे दो, लक्ष्मी, भगवान की पत्नी ही तो लक्ष्मी, और भगवान के चरणों को छोड़ के लक्ष्मी का कहीं ठिकाना नहीं, हमेशा उनके चरणों की सेवा करती रहती, तो भला भगवान के चरणों को छोड़ के वो आपके पास कैसे आए। और ऐसा कह के आप भगवान का अपमान भी तो करते हैं, इसलिए भगवान से आप भगवान को ही मांग लो, तो जहाँ भगवान रहेंगे सेवक सदन स्वामी आगमन मंगल भवन या मंगल दमन, फिर मंगल ही मंगल है अमंगल का नाश। यह हृदय ही भगवान का घर है, इस हृदय को जब हम साफ कर लेते हैं, भगवान के बैठने लायक इसे बना लेते हैं, इस हृदय में जब भगवान का आगमन हो जाता है उस भक्त के जीवन से अमंगल विदा हो जाता है, उसी क्षण से विदा होना शुरू हो जाता है, जिस क्षण से आप सब ओर से अपनी आस्था को हटा के अपने मन को हटा के उस प्रभु में केंद्रित कर देते हैं। तो भजन करने का तरीका पहले इतना ही, आप सुबह उठो, बहुत ज्यादा परपंच नहीं, सुबह उठो हाथ मुंह धो शांति से बैठ जाओ, भगवान को बाहर की पवित्रता से कोई मतलब नहीं है, यदि आपके पास समय है तो स्नान कर सकते हो, उसमें बुराई भी नहीं। मछली हमेशा जल में रहती है, मीन सदा जल में रहे धोए बास न जाए, अगर पानी में स्नान करने से भगवान की कृपा होगी तो पहले सबसे पहले जल जीवों पर होगी, क्योंकि वो रात दिन उसी में रहते हैं। एक गरीब आदमी के घर में अगर कोई घुस जाए और दौड़ाने वाला मारने वाला उसके पीछे लगा हुआ है तो आप अपने घर में से निकाल के उसे मारने नहीं दोगे, मारने दोगे अपने घर के अंदर किसी को मारने दोगे? लेकिन मछली का कछुआ का घर कहाँ है? वही गंगा जल, और उस गंगा जी में से निकाल निकाल के उसके घर में से, जो अपने घर में रहने वालों की रक्षा नहीं कर सकती है, आप लोग तो इतना दूर से जाते हैं तो कैसे रक्षा करे? एक गरीब आदमी भी ऐसा नहीं कर सकता है, कम से कम जो उसके घर में से उन जीवों को निकाल निकाल के मार रहे हैं उनकी नाव पलट जाए, कुछ तो हो, कुछ श्रेय तो मिले, लेकिन उनकी तो और आमदनी हो रही, क्यों? क्यों कुछ है नहीं। गोस्वामी जी ने इसीलिए कह दिया कि मल की जाए मलह के धोए को भ्रत पाव की बारी बिलोए, भला कभी कोई पानी को मत के घी प्राप्त कर सकता है? हर आदमी अपने से सबल की ही तो पूजा करता है, कि जब मैं उस काम को अपने से नहीं कर सकता हूँ तो ये अदृश्य सत्ता मेरी मदद करेगी, और मनुष्य उसको एक बुराई समझ लेता है, एक निंदा समझ लेता है। वास्तविकता यही है, भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन सर्वधर्म पर जम माम एकम शरणम व्रज अहम तो हम सर्व पापे मोक्षस्यामि मा सोचा, और स्वयं प्रक्षर करके देखो, भगवान कृष्ण ने कहा कि सर्व सब पूर्ण धर्मों की चिंता छोड़ के मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस धर्म का, इस व्यर्थ की चिंता को छोड़ के केवल एक मेरी शरण हो जाए, एक परमात्मा की शरण, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। तो कोई महापुरुष जिसने ईश्वर को प्राप्त किया है, संपूर्ण पापों से छुड़ाने की क्षमता उसको होती है, किसी महापुरुष ने ऐसा नहीं किया। तो पहले सुबह शाम का एक नियम बना लो, सुबह शाम का एक नियम बनाओ, निश्चित नियम बनाओ, और नाम का सुमरण करो, पहले बैखरी जो मुंह से व्यक्त हो जाए, फिर मध्यमा, फिर पश्यंती, पश्यंती माने पश्य माने होता है देखना, कि वो नाम जो है ओम या राम छोटा सा वो आपको श्वास में ढला हुआ मिलेगा, जब बैखरी और मध्यमा इन दोनों का अभ्यास हो जाएगा तो वो नाम श्वास में आपको ढला मिलेगा, और जितना ही संसार से आपका मन सिमटता चला जाएगा उतना ही आपका मन निर्मल होता चला जाए। हमारे दुख का कारण है संस्कार, और संस्कारों का निर्माता है मन, ये विचार ही संस्कार के रूप में बदल जाते हैं। परीक्षित का एक ही विचार, परीक्षित एक महात्मा के आश्रम में गए, राजा परीक्षित की कहानी मालूम होगी, तो उन्हें कहा देखो ये महात्मा ध्यान समाधि का ढोंग बना के बैठा है कि मुझे सम्मान देना पड़ेगा, और एक मरा हुआ सत उस महात्मा के गले में डाल दिया, ये विचार ही तो है, और यही परीक्षित का विचार उसकी मृत्यु का कारण बना। तो विचार ही भाग्य के रूप में बदलता है। भगवान किसी को सुख और दुख नहीं देता, भगवान तो अपना प्रतिनिधि संत के रूप में भेजा इस समाज को दिशा दो, और मनुष्य व्यर्थ में ही परमात्मा को दोष देता है। ये भाग्य में जो कुछ लिखा, जैसे किसी ने भाग्य में लिख दिया है, भाग्य में आप ही लिखते हो, जो आपका विचार है, जैसा सोच रहे हो वही वो भाग्य बनता है, और परिणाम के रूप में फिर वही आपको भोगने को मिलता है। तो इन संस्कारों से छुटकारा एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस संसार के विचारों का त्याग करके क्रम क्रम से उस चिंतन को पकड़ लो, एक राम को पकड़ लो या ओम शब्द को पकड़ लो, संसार के विचार छूटते चले जाए। आदमी दुख से छूटने के लिए आत्महत्या कर लेता है, लेकिन वो लड़का जन्म लेते ही अस्पताल पहुंच गए, वो दुख से छूटने के लिए तो आत्महत्या किया, लेकिन जन्म लेते ही फिर दुख पा रहा है। दुख से छुटकारा कहाँ है? दुख से छुटकारा तो तब तक नहीं है जब तक आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर लेते। आप कहीं भी जन्म ले लो, सृष्टि के किसी भी कोने में, तब तक दुख आपका पीछा करता रहेगा जब तक अपने मूल उद्गम परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेते। ये नदी तब तक बहती है, चट्टानों की ठोकरें खाती है, जब तक अपने मूल उद्गम ये समुद्र में प्रवेश नहीं पा जाती। समुद्र में मिलने के बाद नदी का बहना बंद हो जाता, तो इस जीव का संसार में भटकना बंद हो जाता है जब ये अपने मूल उद्गम परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही ये मानव तन मिला हुआ है, और मनुष्य भूल जाते, ये सोचते ही नहीं, कदाचित मैं राजा महाराजाओं के बराबर व्यवस्था बना लूं, उनके बराबर सम्मान बना लूं, यदि वहां सुख होता तो चक्रवर्ती राजा महलों को छोड़ के जंगल क्यों जाते? राजा भर्तृहरि, जिनके छोटे भाई विक्रमादित्य, जिनके नाम से विक्रमी सम्मत चलता है, आपके देश में दो ही राजा हुए, एक अशोक एक भर्तृहरि, उनके नाम से विक्रमी सम्मत चलता है। और राजा अशोक जिसके राज्य का चिन्ह चार मुंह का शेर, आपके नोट में नहीं है, सिक्के में नहीं है, मार्केट में कोई वैल्यू नहीं, उस ये राष्ट्रीय चिन्ह है, क्यों? जब आपके भारत में हजारों राजा हुए तो किसी के राज्य का चिन्ह क्यों नहीं लिया गया जबकि सबकी चिन्ह थे? क्योंकि सारे राजाओं को अशोक ने जीत लिया, जीतने के बाद अपने बच्चों को, वो शुभ चिंतक था, वो अपने बच्चों से कहा देखो मेरी पैतृक संपत्ति के तुम अधिकारी हो, मैंने सारे राजाओं को जीत लिया फिर भी मुझे सुख शांति नहीं है, इतने राजा मुझे सलाम करते हैं इस सम्मान से भी मुझे शांति नहीं है, सारे राजाओं के खजाने मेरे पास हैं फिर भी मुझे शांति नहीं, और यही धन यही उपलब्धि मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा, जब इस उपलब्धि से मुझे सुख शांति नहीं है तुम्हें कैसे हो? अपने दोनों बच्चों को, एक लड़का एक लड़की, दोनों को संन्यास दिया, खोद लिया। तो इस मनुष्य शरीर को पाके हम बच्चों को क्या सिखाते हैं? जितने हम चालाक है उतने बच्चों को चालाकी सिखा देते हैं, शेर जिसका शिकार करता है उसको भी शिकार अपने बच्चों को सिखा देता है, तो हम अलग से कौन व्यवस्था दे रहे हैं? कौवा अपने बच्चे को चालाकी सिखा देता है तो हम नई चीज क्या सिखाते हैं? हम भी तो यही सिखा देते हैं। लेकिन जिसने बहुत बड़ा काम किया, अपने बच्चों को कहा देखो वास्तविकता बताई, इस वास्तविकता को हर माता पिता अपने बच्चे से छिपा लेते हैं और देने लायक यही चीज, क्योंकि आपने जो करोड़ों की संपत्ति जोड़ी है, जैसे आप छोड़ के विदा हो गए ऐसे वो भी तो छोड़ के विदा हो जाएंगे, ऐसी तो कोई चीज उनको दिया ही नहीं जो उनके साथ रहे। देने लायक यही एक चीज है जो उनके अंदर भजन का भक्ति का संस्कार डाल दो, उनको परमात्मा से जोड़ दो। संसार से तो अपने आप जुड़े हैं वो, उनसे जोड़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं, वो तो अपने आप जुड़ गए, लेकिन संसार से न जोड़ के उनके मन को भगवान से जोड़ दो, ऐसा संस्कार दे दो कि उनका वर्तमान भी सुरक्षित रहे और भविष्य भी सुरक्षित रहे, तो सच में आप शुभ चिंतक और हितैषी हो। वो सच्चे अर्थों में सम्राट अशोक शुभ चिंतक और हितैषी, इसलिए इतिहास में उनको सम्राट महान अशोक कहते और उनके राज्य का चिन्ह लिया गया। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है उसी राज्य का चिन्ह परमवीर चक्र तो लिया गया, और भारत में ऐसा कोई राजा ही नहीं हुआ जिसके राज्य में कोई चिन्ह नहीं, हर राजा का चिन्ह होता, तो और राजा का चिन्ह क्यों नहीं लिया गया, इसीलिए नहीं लिया। तो राम भजन बिन सुन खगराई, अभियंतर मल कबहुं की जाई। राम भजन बिन सुन खगराई, सुख चाहै जो आने वो पाई। तेज जड़ महासिंधु बिन तरनी, पैर पार चाहै जड़ करनी। राम भजन बिन सुन खगराई, सुख चाहे जो अन्य उपाय, जो किसी दूसरे उपाय से वो सुख चाहते हैं, कर्म कांड से, क्रिया और सिद्धांतों से, पूजा पद्धतियों से, तो कहते हैं ते जड़, वो जड़ है, ते जड़ महासिंधु बिन तरनी, वो इस महासागर को बिना नाव के पार करने वाले, पैर पार चाहे जड़ करनी, उनकी जो करनी है वो जड़ है। इसलिए एक परमात्मा शिव बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे हूँ प्रभु सेवक बसे अहि, वेद पुराण संत सब कहि। अस प्रभु चाणे भजहि जो आना, सोनर पशु बिन पूछ बिसाना। तो इस परमात्मा को छोड़ के जो किसी का भी भजन करता है वो बगैर सिंह पूछ का पशु। गुरु नानक ने कहा कि सुमिरह जास विसंभर एक, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला उसे एक परमात्मा का सुमिरन करो। और सुमिरन कैसे करें, तो कहते हैं एक ओंकार सदगुरु प्रसाद, एक ओम का जाप करो, यह गुरु का प्रसाद है, यही वास्तविक प्रसाद है जो आप कहते हैं पवित्र करेगा। संत कबीर ने यही तो कहा, राम प्यारा छोड़ के करे और का जाप, बेस्या खिरो पूत जो कहे कौन को बाप। अगर बेस्या के लड़के से पूछे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो इसी प्रकार उसकी दशा होती है जो परमात्मा को छोड़ के करे और का जाप। मोहम्मद साहब ने कहा कि एक अल्लाह या अल्लाह इल्लल्लाह, केवल एक परमात्मा ही है पूजने योग्य और सृष्टि में कोई नहीं। किसी महापुरुष ने तो दूसरी बात नहीं कही, पता नहीं ये समाज में अनेकों प्रकार के रास्ते कर्म कांड किसने चला, और इसे मनुष्य परमात्मा से दूर होता चला गया और अपनी क्षति। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन जो मनमाना आचरण करते हैं वो मुझे न प्राप्त होकर वो तो उत्तरोत्तर गिरते ही चले जाते हैं, अधोगति में उनका पतन होता ही चला जाता है। भगवान से तो हम दूरी हो गए, और जितना जो भगवान से दूर है उतना ही उसके जीवन में दुख है। इसलिए हमें कोशिश ये करना है कि जिससे भगवान से दूरी कम हो, और भगवान से दूरी का कारण है संसार के विचार। जितना ही ये आपके हृदय में कम होंगे, मानस रोग कछुक में गाए, है सबके लख वीर नहीं पाए। सबके अंतराल में और इनके नष्ट करने का उपाय सृष्टि में एक, जब यही भांति बन ही संजोगा, राम कृपा नाशय सब रोगा। संजोग कैसा, सत गुरु बचन वैद विश्वासा, संजम यह न विषय करे आशा। अनुपान श्रद्धा मत पूरी, रघुपति भगत सजीवन मूरी। यही विधि भले सुरोग न साई, ना ही तकोटि जतन नहीं जाए। यदि आप चाहते हो कि हम सुखी रहें, हमारी संतान सुखी रहे, तो पहले किसी के बहकाए में मत आओ, पहले विचार करके देखो कि दुनिया में हमारा जीवन किसके द्वारा सुखी, दुनिया में कौन ऐसा है जो हमारे जीवन में आने वाले दुख को रोक सकता है। शायद आप किसी को नहीं पाओगे एक परमात्मा को छोड़ के। तो जितना आप संसार से प्रेम करते हो, तुलसीदास की पत्नी ने कितनी अच्छी बात कही थी, कही तो उनके लिए लेकिन ये सबके लिए। तुलसीदास के पत्नी ने एक ही बात कही कि जितना प्रेम इस शरीर से है उतना प्रेम यदि भगवान से होता तो तुम्हारा उद्धार हो जाता। कितनी सच्चाई, जितना प्रेम हमारा भोगों से है, परिवार से है, पति से है, बच्चे से है, मित्र से है, धन से है, सम्मान से है, और जिनसे है उन्हें आप रोक भी नहीं सकते हो। जिनसे आपका प्रेम है जब वो नष्ट होंगे तो उन्हें नष्ट होने से आप रोक भी नहीं सकते हो, लेकिन यदि प्रभु से आपका प्रेम हो गया तो आपके जीवन में ये अप्रिय घटना घटेगी ही नहीं, क्योंकि रोकने वाले जो हैं उनको आपने पकड़ लिया है। इसलिए इन सब को मत साधो, ये कहीं साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तुलसी मुने से ये फूले फरे अगर। आप किसी न किसी के मन का तो कर रहे हैं। बहुत से ऐसे अभिमानी व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम किसी के मन का नहीं करते, हम तो अपने मन का करते हैं। तो किसी के मन का करो अथवा अपने मन का करो। कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी न किसी को खुश करने का उपाय नहीं कर रहा? आप किसी न किसी को खुश करने के लिए ही तो कर रहे हो, और जिसको खुश करने के लिए प्रयास कर रहे हो वो अगर खुश भी हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? अंत में दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए यदि खुश करना है तो उस ईश्वर को अपने सच्चे मन से उस प्रभु के सुमरण में अगर समय देना शुरू कर दिया तो आपका संबंध धीरे धीरे उस प्रभु से हो जाएगा। प्रभु फिर आपकी पुकार सुनने लगेंगे, आपके जीवन की समस्या धीरे धीरे स्वतः आपको कहना नहीं पड़े, भगवान से कभी कहना पड़ता ही। रही मन चाहे कुम्हारे का मांगे दिया न दे, छेद में डंडा डाले के चाहे नांद ले ले। कुम्हार का चाक देखो, आपने दीपक जलाया होगा, उस चाक का सबसे छोटा पात्र है दीपक, और सबसे बड़ा पात्र क्या है? नांद, जिसमें पशुओं को घास खिलाते हैं। और छेद में डंडा डाल के चाहे नांद ले ले, और मांगने से वो छोटा सा दीपक नहीं देगा, तो भगवान मांगने से नहीं देते। उसके अनुकूल आचरण करके आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, और उसका शुरुआत अनुकूल हो। एक परमात्मा प्रथा केंद्रित करो और प्रभु का सुमिरन, नाम का जाप करो तो सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय स्नेह विषय के। नाम का सुमिरन करो, बिना रूप देखा ही नहीं भगवान कैसा होता है, तो हृदय में उस सदगुरु का स्वरूप आ जाएगा जिसने ईश्वर को पाया है, और फिर उस सदगुरु के द्वारा आपके हृदय में भजन की जागृति होगी। भजन की जागृति, भगवान आपसे बातें करने लगेगा, आपका मार्गदर्शन करेगा, आपके जीवन में कोई भी घटना घटेगी भगवान पहले बताएंगे, तो भगवान हमसे बातें करने लगे। परीक्षा की घड़ी आती, सबके जीवन में आती, तुलसीदास के भी आई, कबीर साहब भक्त के सामने आती है, कबीर साहब के सामने आई परीक्षा की घड़ी, क्योंकि इसमें विघ्न भी बहुत है। महाराज मनु के सामने भी आई, कबीर साहब के सामने भगवान और गुरु दोनों खड़े हो गए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। बलिहारी गुरु आपकी, जब दोनों खड़े हो गए तो कबीर विचार करने लगे कि मैं पहले किसको प्रणाम करूं, तो लख 84 भटकी के पांव पर अटकी आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। फिर 84 लाख योनि का चक्कर लगाना है, फिर इसी बेगार पने में हमें भटकना है संसार में। हम बेगार तब तक करते रहेंगे जब तक उस प्रभु को नहीं प्राप्त कर, ये बेगार ही तो करें। जब हाथ में दो नया लगना नहीं तो बेगार ही तो है। तो इस बेगार पने से यदि छूटना है तो हमें एक परमात्मा में आस्था के साथ उसी के नाम का सुमरण करना हो।